ये आकाशवाणी दिल्ली है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने आकाशवाणी नई दिल्ली के रंग भवन में नए आयामों की खोज में भारतीय अंतरिक्ष यात्रा विषय पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कृत्रिम बारिश को लेकर बैठक आयोजित करने का आग्रह किया। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओब्रॉय ने आईटीआई बिल्डिंग के पास बने प्रदूषण के चिन्हित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कॉलेजों का निरीक्षण शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को 2% से बढ़ाकर 10% करने की है। डॉ एस सोमनाथ ने आज आकाशवाणी नई दिल्ली के रंग भवन में नए आयामों की खोज में भारतीय अंतरिक्ष यात्रा विषय पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान 2024 में ये बात कही। डॉ सोमनाथ ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हितधारकों से सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 शुरू की है और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में 200 से अधिक स्टार्टअप हैं।
There is a new policy called Space Policy 2023 has been announced. Right. A new foreign direct investment policy has been announced by government. A new geospatial policy came out. All these are adding to creating a more vibrant space economy. Today our aspiration is that India's contribution to global space economy is hardly 2% today. We would like to expand it to something like 10% in the coming 10 plus years. To make it happen, we need participation of many, many other stakeholders. We want startups, we want big companies to come into space and contribute to create a vibrant space ecosystem.
अंतरिक्ष क्षेत्र के स्वदेशीकरण पर डॉ सोमनाथ ने कहा कि भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी जो देश की स्वदेशी क्षमता पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकों को ज्ञान और उद्योगों का उपयोग करके देश में ही तैयार करना चाहिए। डॉ सोमनाथ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इसरो के उपग्रह प्रसारण संचार, मौसम पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, नेविगेशन, व्यक्तिगत संचार और भूमि तथा हवाई अड्डे पर अधिकारियों की सहायता सहित अन्य क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं।
We have this many of the satellites now along with other thousands of satellites up there. But then it's not just the satellite that we have. We have produced connect to the stakeholders who are actually using the satellites in a big way. The communication, I think Akashwani and Doordarshan are the users of the satellites in the form of television broadcasting, DTH services. We have connectivity of internet. We have also connectivity to various stakeholders who use us our networks.
भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशनों पर डॉ सोमनाथ ने कहा कि इसरो आने वाले वर्षों में अपना पहला मानव रहित मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल और अन्य लोग उपस्थित थे। सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान आकाशवाणी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ये व्याख्यान 1955 से लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। सी राजगोपालाचारी, डॉ जाकिर हुसैन, मोरारजी देसाई, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, जयंत नार्लिकर, एमएस स्वामीनाथन, अरुण जेटली, अजीत डोभाल और एस जयशंकर जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारत और इसकी सामाजिक आर्थिक प्रगति पर व्याख्यान दिया है। इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर आकाशवाणी के सभी नेटवर्कों पर प्रसारित की जाती है। आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में डॉ एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समय के साथ और सुलभ होती जा रही है तथा इसका वास्तविक प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था, रोजगार क्षमता और रोजगार सृजन पर पड़ रहा है। यही कारण है कि सरकार ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक निजी निवेश और निजी भागीदारी लाने की पहल की है। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा डोमेन है जिसे हमेशा नियंत्रित और विनियमित नहीं रखा जा सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कृषि मंत्रियों सहित प्रमुख अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। इस बैठक के बाद श्री चौहान ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 35% और हरियाणा में 21% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में 51% से अधिक की कमी हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति पर निगरानी जरूरी है। श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार से 3 लाख से ज्यादा मशीनें दी हुई हैं जो पराली प्रबंधन का काम करती हैं।
2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है, लेकिन अभी लगातार ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों ने बताया कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके नोडल अफसर तय हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और सरकारें अपने ओर से भी सारे प्रयत्न कर रही है एक जन जागरण का।
वहीं राज्यों ने बैठक में बताया कि वे प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करते हुए जन जागरण अभियान को और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खराब श्रेणी में रखा गया है। बोर्ड ने दोपहर राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 235 दर्ज किया है। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच का AQI संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब और 301 से 400 बहुत खराब तथा 401 से 450 के बीच का AQI गंभीर माना जाता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश की आवश्यकताओं को लेकर वो पिछले 1.5 महीने में 3 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं। श्री राय ने कहा कि आज प्रदूषण को लेकर केंद्रों और राज्यों के बीच हुई बैठक में उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से कृत्रिम बारिश को लेकर एक बैठक आयोजित करने का निवेदन किया है। श्री राय ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
पहला तो ये कि जो पराली जलने की घटनाएं हैं आगामी दिनों में और उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, जो पटाखे दिवाली पे जलते हैं, धूमधाम से लोग दिवाली मनाएं, लेकिन चूंकि अब पटाखे लोगों के जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, तो पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ NCR की सभी सरकारें इस पर सक्रिय पहल करें। और तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन अगर बनती है तो आर्टिफिशियल रेन के लिए तैयारी किया जाए।
दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओब्रॉय ने आज दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित ITI बिल्डिंग के पास बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
महापौर ने परिसर में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन पर क्षेत्र के AQI स्तर की जांच की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदूषित क्षेत्रों में धूल दमनकारी पाउडर के साथ बड़े पैमाने पर पानी का छिड़काव करने को कहा। डॉक्टर ओब्रॉय ने अधिकारियों को खुले में कूड़ा जलाने या निर्माण और विध्वंस C&D अपशिष्ट नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा को आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दिल्ली भाजपा ने बताया कि उन्हें खुजली और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे आज से 7 नवंबर तक विशेष रेलगाड़ियों के 195 अतिरिक्त फेरे लगाएगा। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से उपलब्ध होंगी। इन रेलगाड़ियों में विशेष तौर पर पटना, कटिहार, दरभंगा सहित पूर्व दिशा की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया है कि यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। उन्होंने आगे बताया कि इन विशेष रेलगाड़ियों में अनारक्षित श्रेणी के लगभग 54,000 यात्रियों के लिए भी सीटें बढ़ाई गई हैं। श्री वर्मा ने बताया है कि यात्रियों की भीड़भाड़ को व्यवस्थित करने के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष पंडाल लगाए जा रहे हैं, जहां यात्री टिकट खरीदने के साथ ही आराम कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सभी विशेष रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 16 से परिचालित की जाएंगी। श्री वर्मा ने बताया कि यात्रियों की भीड़भाड़ को व्यवस्थित करने के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष पंडाल लगाए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कल शक्ति संगम नाम से दिवाली मेले का आयोजन किया। पर्यावरण अनुकूल हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन संचार सहायता समूह के माध्यम से किया गया। इस मेले के माध्यम से जल बोर्ड ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और यमुना पुनर्जीवन का संदेश दिया। एक रिपोर्ट।
दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय के लॉन वरुणालय में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण अनुकूल हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इनमें जूट और कपड़े के बैग, फूलों और सब्जियों से बने लैंप, अगरबत्ती, दिए, सजावटी मोमबत्तियां, महिलाओं के कपड़े, फूलों के बर्तन, लटकन आदि जैसे उत्पाद शामिल थे। इनमें से कई वस्तुएं उन सामग्रियों से तैयार की गई जिन्हें आमतौर पर कूड़ेदान या नदी में फेंक दिया जाता था। प्रदर्शनी के प्रति दर्शकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। प्रदर्शनी में दिल्ली जल बोर्ड के 4 सहयोगी गैर सरकारी संगठनों से जुड़े कुल 13 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार के लिए भानु प्रताप सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह पिछले 3 दिनों से सभी कॉलेजों के निरीक्षण पर हैं। इस कड़ी में उन्होंने आज दक्षिणी परिसर के कॉलेजों का दौरा किया। इस दौरान श्री सिंह ने सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के साथ प्रधानाचार्यों और संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2024 के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने बताया कि कुलपति द्वारा स्वयं कई कॉलेजों का निरीक्षण किया गया है, जबकि कई जगहों पर अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2024 के दौरान संपत्तियों पर लगे पोस्टरों और फ्लेक्स आदि को हटवाने को लेकर कुछ कमेटियों का गठन किया गया था, जो सभी कॉलेजों का निरीक्षण कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध नर्तक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व कनक राजू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली में मौसम आज सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने आकाशवाणी नई दिल्ली के रंग भवन में नए आयामों की खोज में भारतीय अंतरिक्ष यात्रा विषय पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कृत्रिम बारिश को लेकर बैठक आयोजित करने का आग्रह किया। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओब्रॉय ने आईटीआई बिल्डिंग के पास बने प्रदूषण के चिन्हित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कॉलेजों का निरीक्षण शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।